ओम शांति। हमारे मध्य आदरणीय आशा दीदी जी उपस्थित हैं। हम जोरदार करतल भरी से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहन जी इस एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की चेयरपर्सन हैं और ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव दिल्ली में स्थित आप उसकी डायरेक्टर हैं, जिसमें वर्ष के 365 दिन लगातार कोई न कोई कार्यक्रम नित चलते ही रहते हैं। बाल्यकाल से ही बहन जी विद्यालय से जुड़ गए थे और पिछले लगभग 50 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपके मार्गदर्शन में विद्यालय ने बहुत ऊंचाई को प्राप्त किया है। विद्यालय में चलने वाले टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आपने हजारों कन्याओं को योग्य शिक्षिका बनाया है, जो देश विदेश में फैल करके ये ईश्वरीय सेवाओं का अपना कर्तव्य कर रही हैं। आदरणीय बहन जी, विद्यालय से निकलने वाली प्योरिटी न्यूज मैगजीन की भी एडिशनल चीफ एडिटर हैं। ऐसी आदरणीय बहन जी से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गौरवशाली यात्रा के बारे में सुनेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि कैसे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक छोटे से रूप में प्रारंभ होकर के आज एक बहुत विशाल वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व के अंदर, पांचों महाद्वीपों के अंदर, 140 देशों से भी अधिक देशों के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। लाखों भाई बहने कैसे इस विद्यालय से जुड़ते चले गए। आदरणीय दीदी जी से अनुरोध है कि वो हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। दीदी जी, बहनों से अनुरोध है, दीदी जी का बैच और गुलदस्ते से स्वागत करेंगे।
ओम शांति। सब एक्टिव और अलर्ट नजर आ रहे हैं, थकावट नजर नहीं आ रही, ऐसा ही है ना? जैसे आप यहां बैठ के सुन रहे हो, मैं भी सवेरे से सारा सुन रही हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को मैं मुबारक देती हूं, एक के बाद एक के बाद एक सेशंस जिनको आप स्वीकार कर रहे थे, लेकिन हर सेशन की अपनी विशेषता है ना, एक सेशन न मिले दूसरे से, हर सेशन की अपनी विशेषता है। और हर सेशन से सीख भी रहे होंगे, अपने लिए डायरी में नोट भी कर रहे होंगे, ये जरूरी है। यही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की विशेषता है कि यहां पर मात्र वाणी द्वारा लेसन्स दिए नहीं जाते हैं, लेकिन हर बात को प्रैक्टिकल जीवन में हम अप्लाई करें उसके लिए आग्रह तो क्या, लेकिन उस पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। तो आज मैं आपको इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में संक्षेप में बताऊंगी। 80 वर्षों की यात्रा, 80 मिनट तो होने चाहिए लेकिन इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, उसको और कंसाइज करूंगी। जो पोर्शन आपके जानने योग्य है उतना ही पोर्शन बताऊंगी। बात ये 1936-37 की है, जबकि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का बीज बोया गया। इनके जो फाउंडिंग फादर हैं वो हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जो एक साधारण व्यापारी थे हीरे जवाहरातों के, परंतु उनका व्यक्तित्व बहुत उज्जवल था, चरित्र बहुत ऊंचा था। थे वो एक मास्टर के बच्चे, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि के आधार से उन्होंने इतना अपने जीवन को उत्कृष्ट स्तर पर लाया जो व्यापार में भी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया और उनका व्यापार राजाओं महाराजाओं के साथ चलता था। हीरे जवाहरातों का धंधा था, लुक्रेटिव था, परंतु मैं बाबा शब्द यूज करूंगी, हालांकि बाबा शब्द बहुत आजकल डैश डैश डैश, लेकिन जब मैं बाबा कहूंगी तो बाबा हम शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा मतलब पिता, और परमात्मा शिव है ऐसी हमारी मान्यता है। और जब मैं बाबा कहूंगी ब्रह्मा बाबा, तब इनके लिए होगा, शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु के लिए। तो ब्रह्मा बाबा का जो ओरिजिनल नाम था वो था लखीराज, लखीराज, और सिंध में थे, जो पोर्शन आज पाकिस्तान में चला गया है। सिंध में रहते थे और बाबा बहुत जबरदस्त भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त, नारायण के भक्त। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन करते थे, उसके बिना जल भी स्वीकार नहीं करते थे, भक्ति भाव बहुत था। साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा का जो गुरुओं के प्रति भक्ति भाव था वो बहुत अधिक था। उन्होंने 12 गुरु किए थे और गुरुओं को अपने घर में रिसीव करते थे, उनके घर में ही ठहरते थे। और मैं कहती हूं, क्या कोई गुरुओं की सेवा करता होगा जो बाबा करते थे? जबरदस्त, नो कंपैरिजन। गृहस्थी थे, उनके 5 बच्चे थे, 3 कन्याएं और 2 कुमार, जिनकी विधिवत उन्होंने सबकी शादियां कर दी थी। और बाबा को ये कहा गया था, किसी ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारी आयु मात्र 60 वर्ष की है। तो जब 60 वर्ष के करीब बाबा पहुंच रहे थे तो बाबा के मन में बहुत इस सारी दुनिया से वैराग, भक्ति भाव का और अधिक होना, ये संसार क्या है, ऐसे ऐसे इस प्रकार की बातें विचार उनके मन में आने आरंभ हुए। और उनको अब ऐसे लगता था ये हीरे जवाहरात नहीं है, पत्थर सदृश है। और इस ही दौरान बाबा को साक्षात्कार हुआ, और वो साक्षात्कार हुआ पहला ज्योति बिंदु का। बाबा के घर में गुरु आए हुए थे, वे प्रवचन दे रहे थे। सामान्य रूप से अगर कोई प्रवचन दे रहा होता है तो उसकी सभा से उठना माना उसका अपमान करना होता है। तो ऐसे ही जब बाबा बैठे थे सभा में, गुरु का प्रवचन चल रहा था, बाबा को पता नहीं आंतरिक रूप से क्या हुआ और बाबा उठ करके अपने कमरे की ओर गए। कमरे की ओर जब जा रहे थे तो उनकी जो बड़ी पुत्र वधु थी, जिनका नाम ब्रज इंदिरा दारी था, जो महाराष्ट्र की हमारी इंचार्ज बनी बाद में, तो वो उनको फॉलो कर रही थी। बाबा अपने कमरे में गए और पद्मासन में बैठे थे और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जैसे ही ब्रजेंद्रा दादी कमरे की दलहीज में पांव रखती हैं, उनको सारा कमरा लाल लाल महसूस होता है, लाल प्रकाश से आलोकित, और बाबा के नैनों से अश्रुधारा। थोड़ी देर में बाबा अपनी आंख खोलते हैं तो कहती है, दादी ऐसा लगता था जैसे कि दो बल्ब जग रहे हो, लाल पावरफुल दृष्टि नजर आ रही थी। और आवाज सुनते हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये उन्होंने आवाज सुनी और थोड़ी देर के बाद बाबा कहते, कौन था? कोई लाइट थी, कोई माइट थी। तो बाबा ने समझा कि यह साक्षात्कार निराकार ज्योति का जो उनको हुआ है, ये शायद गुरु की कृपा से हुआ है। तो बाबा गुरु से जब मिलने के लिए जाते हैं तो जैसे किसी को कोई बात का पता ना हो, वो आप उसके चेहरे से समझ सकते हैं ना, ऐसे ही बाबा को लगा कि ये गुरु की कृपा से नहीं हुआ, क्योंकि गुरु को इसका कुछ भी पता नहीं है। बात पूरी हो गई। अब बाबा का जो बिजनेस में इतना ध्यान जाता था, नेपाल के महाराजाओं के साथ समय थोड़ा है, नहीं तो काठमांडू में जो महारानियां रही, महारानी की माँ बताती थी, वो हमारे सेवा केंद्र के पीछे ही रहती थी, वो सेवा केंद्र पर आती बताती थी कि किसी को भी महिलाओं के जो एरिया होता है रानियों का, उसमें महलों में जाने के लिए परमिशन नहीं होती थी, लेकिन बाबा को जेवर आदि दिखाने थे तो बाबा को परमिशन मिलती थी, कोई पुरुष नहीं जा सकता था। लेकिन बाबा का चरित्र इतना अच्छा था और इतना उनका व्यवहार अच्छा था जो कि उनको अंदर तक जाने की परमिशन मिलती थी। तो वो महारानी बताती थी, महारानी की माँ, कैसे बाबा एक एक जेवर अपने हाथ से बनाते थे। और इसकी एक और निशानी, लंदन में क्राउन ज्वेल म्यूजियम है, और क्राउन ज्वेल म्यूजियम में आजकल तो नहीं रखा है, लेकिन जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो वहां पर रियल ज्वेलरी क्वींस की रखी हुई थी। और बाबा की बेटी दादी निर्मल शांता, जब वो लंदन जाती है तो वो तुरंत ज्वेलरी को देख करके पहचान लेती है कि ये बाबा के हाथ की बनी हुई है। तो वहां की जो सिक्योरिटी होती है वो हैरान होती है कि इसको कैसे पता, वो उनको पूछताछ करती है, पता लगता है। तो वो क्वीन विक्टोरिया होती थी, उनके पास उनको लेकर के गए, पहचान हुई, क्वीन विक्टोरिया ने उनकी आवभगत की, आदि आदि। बाबा की हाथों की बनी हुई ज्वेलरी वो इस प्रकार राज रजवाड़े उसमें जाती थी। फिर तो मैंने जैसे सुनाया कि बाबा के मन में वैराग्य आ रहा था, आता गया आता गया। अब उन्होंने अपने जो बिजनेस पार्टनर थे उसको कहा, तुम बिजनेस संभालो, जो देना है वो मुझे दे दो, और बाकी मैं अब ये धंधा नहीं करूंगा। तो बिजनेस पार्टनर को पहले तो शॉक लगा, क्योंकि बाबा की कला और योग्यता के कारण ही बिजनेस इतना फ्लरिश कर रहा था, और अब अगर बाबा नहीं होंगे तो बिजनेस का क्या होगा। परंतु बाबा वहां से यूं कह के आ गए और ट्रेन से तार भेजा, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, अलफ को आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। तो मैं तो चल पड़ा हूँ और तुम अभी इसको संभालो। तो इस प्रकार से आज भी मैं बताना चाहूंगी, कलकत्ता में बीसियों दुकानें लकी बाबू के नाम से है। वो दुकानें बाबा की नहीं है, लेकिन जैसे किसी का नाम अच्छा होता है तो उसको यूज करते हैं, ऐसे ही वहां पर न्यू मार्केट एरिया में आप दुकानें देखें, लकी बाबू की सोने चांदी की दुकान, लकी बाबू की हीरे जवाहरात की दुकान आदि आदि। मैंने तो देखी थी, अभी वो है या नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत समय पूर्व लगभग 30 साल पहले तो मैंने अवश्य देखी थी। तो इस प्रकार बाबा का बिजनेस से परे होना। अब बाबा को जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते थे तो बाबा को पढ़ते पढ़ते उसके नए नए अर्थ इमर्ज होते थे, और इसी ही दौरान बाबा को दूसरा साक्षात्कार होता है विष्णु चतुर्भुज का, और आवाज आती है अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी वही हो। तो बाबा हैरान होता है कि मैं तो साधारण गृहस्थी, विष्णु जी का पुजारी, मैं विष्णु कैसे हो सकता हूँ। तो ऐसे बुद्धि चलती है, गुरु से पूछते हैं परंतु उस तरीके का उत्तर उन्हें उपलब्ध नहीं होता जो कि उनकी बुद्धि को सूट करे। थोड़े दिन बीतते हैं, फिर एक साक्षात्कार, और वो साक्षात्कार होता है इस पुरानी आसुरी नरकमयी सृष्टि का महाविनाश। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1939 में पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी में फेंका गया, परंतु ये जो बाबा ने साक्षात्कार किया ये 39 से पूर्व किया, 37 के करीब किया, और उसमें उस साक्षात्कार में देखा था कैसे एटॉमिक वॉर से इस पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश होना है। चीतकार, पुकार, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कलामिटीज, हाहाकार, रक्त की नदियां। तो बाबा डर जाते हैं और तुरंत उसके बाद साक्षात्कार होता है नई देवी सृष्टि का, जिसमें बाबा देखते हैं कि ऊपर से सितारे आते हैं और ज्यों धरती पर पड़ते हैं राजकुमार राजकुमारी का रूप ले लेते हैं। बहुत सुंदर, जैसे स्वर्ग में ही सृष्टि होती है, इस तरीके का वो पूरा बाबा ने साक्षात्कार में देखा। और आवाज सुनी कि ऐसी सृष्टि बनाने के निमित्त तुम हो। अब ये आश्चर्यजनक बात है। तो बाबा का जो था दिमाग और चलने लगा। बॉम्बे में एक बिल्डिंग है सदगुरु निवास, उसमें बाबा रहते थे, और बाबा की वो बिल्डिंग मैंने देखी है, और उस बिल्डिंग से सामने बबलनाथ का मंदिर है बॉम्बे में, और वहां पर बाबा जब बैठते थे ध्यान निमग्न अवस्था में, तब बाबा को ये चारों जो धाम है उनके देवता आते हैं, उनका आलिंगन करते हैं और वरदान देते हैं। एक एक आता वरदान देता है, अहम सो एन सो तत्त्वम, मैं ये हूँ तत्त्वम। इस प्रकार से अब बाबा के मन के अंदर काफी कुछ हलचल मचनी शुरू होती है, और ये स्पष्ट नहीं होता ये सब क्यों हो रहा है। 60 वर्ष की आयु में कहा गया था तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो शायद पुरानी लौकिक जो दुनिया थी, लौकिक जीवन था उसका एंड, और ये नया दैवी जीवन उसका आरंभ शायद ये रहा। बाबा ने ऐसा ही सोचा, और उसके बाद फिर बाबा को साक्षात्कार समय प्रति समय होते रहे, और श्रीमद् भगवद गीता जो मैं बता रही थी उसका जब आप पाठ करते थे तो नई 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 इंटरप्रिटेशंस, नए नए अर्थ इमर्ज होते थे। वो बाबा अपने घर वालों के साथ शेयर करते थे। तो जैसे मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं अपने फ्रेंड को भी बुलाती हूँ, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। तो धीरे धीरे करते बाबा के घर में ही सत्संग का रूप होता गया और उसमें अधिक आने वाले भाई बहने दोनों ही थे, गृहस्थी थे। लेकिन अगर आप उस समय के सिंध की दशा को याद करें तो सिंधीज बिजनेस पर्पस से विदेशों में रहते थे, उनके पुरुष विदेशों में रहते थे, महिलाएं भारत में रहती थी। और कितने शादी हो चुकी है, कितने वर्षों के पश्चात कभी कोई आ जाते थे, उस वो समय ही ऐसा था क्योंकि उनको प्रॉस्पर करना था, अपने बिजनेस को चलाना था और महिलाएं पीछे। और महिलाओं के लिए बताते हैं बहुत ही कष्टदायक जीवन था। अगर कोई महिला, सिंधी महिला के लिए एक दिन अच्छा होता था तो कहते वो उसकी शादी का दिन होता था। जिस दिन उसको जेवर आदि पहना करके और उसकी थोड़ी सी महत्व रख लेते थे, अदरवाइज बहुत खराब दशा। महिलाओं का तो आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि महिलाओं का तिरस्कार, महिलाओं का कैसे अपमान, ये सब पहले होता रहा है। अब वो जो महिलाएं आती थीं, घर गृहस्थ वाले आते थे, ओम की ध्वनि बाबा लगाते थे, ओम करके। मैं तो नहीं आज बोल पाऊंगी गला खराब होने के कारण, पर तो ओम की ध्वनि लगाते, तो ओम की ध्वनि से वातावरण बहुत शुद्ध शक्तिशाली बन जाता था और बाबा जो अर्थ करते थे वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे करते करते वो पूरा बड़ा संगठन बनता चला गया। अब जब पुरुष लोग आए विदेश से, उन्होंने देखा कि उनकी महिलाएं तो सत्संगी हो गई हैं, रोज सत्संग में जा रही हैं, क्योंकि फ्री होती थी, कोई खास कामकाज नहीं होता था, तो महिलाएं सत्संग प्रेमी हो गई हैं और महिलाएं बड़ी सात्विक हो गई हैं, उनका खान पान सब शुद्ध हो गया है। अब उनके मन में आने लगा ये क्या हुआ हमारा परिवार। तो उन्होंने एंटी जैसे कहते हैं ना, इस कोई भी चीज नई आती है समाज में स्वाभाविक है, उसके अगेंस्ट लोग आवाज उठाते हैं। तो आवाज उठनी शुरू हुई, ये बंगाल से जादू सीख करके आया है और इसने हमारी महिलाओं को अपने वश में कर लिया है आदि आदि। अब बाबा तो कोई बंगाल से जादू सीख के नहीं आए, तो ज्ञान ही सुनाते थे, बहुत कुछ है। थोड़ा सा टसल भी चला, बाबा हमेशा कहते थे सत्य की विजय होती है। उन्होंने जितना ऑपोजिशन किया उतना ही इनका त्याग और तपस्या का दौर बढ़ता चला गया, और त्याग और तपस्या में तो शक्ति होती है, उतना परमात्मा से प्रेम और बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार से ये वहां पर जब चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे उन्होंने 14 वर्ष तक बाबा ने जो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया सिंध, वहां पर ही 14 वर्षों तक तपस्या बच्चों को सिखलाई, तपस्वी जीवन में रखा। जो हमारी मुख्य शिक्षाएं हैं वो है, हमारा दुश्मन कोई नहीं, आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। दूसरी बात, हमारे शत्रु 5 विकार जो कि पुरानी संस्कृति से चले आ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देह अभिमान, सर्व पापों का मूल है। चौथा, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप अपने घर में दिया जगाएं, तब आप बाहर जगा सकते हैं। घर में ही नहीं किया तो बाहर में कैसे होगा। इसी रीति से बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रह करके कमल पुष्प समान बनना है। घर गृहस्थ का त्याग और संन्यास नहीं करना, घर गृहस्थ में रह के करना है। कोई मनुष्य आत्मा की सदगति नहीं कर सकती है। मां, पिता, शिक्षक, सदगुरु केवल एक निराकार है। इसलिए आप पाएंगे यहां पर कोई गुरु, कोई ऐसा आप व्यक्ति नहीं देखेंगे जिसके लोग चरण स्पर्श कर रहे हो, गुरु हो। आपने देखा, दो दिन में देखा है कोई ऐसा? नहीं है। क्योंकि हमारी मूल शिक्षा है, देहधारी देहधारी का कल्याण नहीं कर सकता। इसी रीति से बदला न लो, बदल कर दिखाओ। निंदा हमारी जो करें, मित्र हमारा सोए, आदि आदि, ये हमारी कुछ शिक्षाएं। कुछ तो इस प्रकार से इन सब शिक्षाओं से सुसज्जित होते रहे 14 वर्ष। आप कल्पना करिए, 14 वर्ष तक बाहर कोई भी संसार से संबंध नहीं था, केवल आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन और उसको जीवन में उतारना। जब तक ज्ञान को गुण में नहीं परिवर्तित किया है, वो ज्ञान किस काम का। फिर बाबा ने, हम 14 वर्षों तक ये हुआ तो पाकिस्तान बन चुका था। पाकिस्तान बनने के 4 वर्ष बाद 1937 में एस्टैब्लिश हुआ। उस समय इसको ओम मंडली कहते थे। 4 वर्ष 47 तक ये हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। उसके 4 वर्ष बाद तक पाकिस्तान में ही रहे। वहां पर बहुत प्यार करते थे, जो पाकिस्तानी थे बहुत प्यार करते थे, अल्लाह के बच्चे हैं ऐसा कहते थे। लेकिन फिर भी भारत भारत है और अपने देश में ही आना अच्छा था। तो बाबा के कई ऐसे मित्र संबंधी थे जो आश्रम में रहते थे लोग। कई मित्र संबंधी उनके कहने लगे बाबा को, बाबा आप भारत में शिफ्ट हो जाएं और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। बाबा ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति एक ट्रस्ट बना करके समर्पित कर दी थी, जिससे कि आश्रम निवासियों का लालन पालन हो रहा था। तो कितना ही धन हो, अगर कमाई नहीं तो क्या होगा, एक दिन तो खत्म होगा, कुआं भी सूख जाता है। तो आखिर ऐसा हुआ कि सिंधीज ने कहा, उनके मन में तो कुछ और बात थी, उन्होंने बाबा को कहा कि आप भारत आ जाए और भारत में हम आपका सारा प्रबंध करेंगे। बात ठीक थी। तो वहां से 350 भाई बहने जो आश्रम में रहते थे, उन सबको लेकर बाबा शिफ्ट हुए भारत में। और उनके मन में तो कुछ और ही उपज रहा था, और वो ये था कि वो संस्था, मैंने शुरू में सुना है ना कि वो चाहते थे, ऑपोजिशन किया उन्होंने और चाहते थे खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो उन्होंने ऐसा ही प्लान बनाया कि कोई भी वहां रिसीव करने नहीं गया। ओखा बंदरगाह जो कि जामनगर के पास है, वहां पर शिप के द्वारा आए। और जब वहां कोई नहीं था, ये भी एक शिव बाबा की ही मदद थी, जो बाबा को उनके गुरु, उनका संदेश मिला कि तुम्हारे लिए आबू अच्छा दिखता है। और वहां से आबू में, अब आबू में 350 लोग कहां रहेंगे, यहां तो कोई ऐसी जगह थी नहीं, तो 350 को कहां रखना है। तब बाबा ने दीदी मन मोहिनी हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की बाद में एडिशनल चीफ हुई और बहुत धनाढ्य परिवार की थी, बॉम्बे का जो जसलोक हॉस्पिटल उनके दीदी के भाइयों का था, उनकी मदर को क्वीन मदर कहा जाता था, और भी बहुत बड़ा बिजनेस था। तो बाबा ने दीदी गौरी को भेजा कि जाओ भाई देखो माउंट आबू में कोई ऐसी जगह जहां 350 लोग रह सके, तो ऐसी तो कोई जगह नहीं थी। एक स्थान था जहां पर की ब्रिज कोठी, जहां पर की रहना हुआ, और वहां पर वो अभी भी, अब तो होटल बन गया है वो, आप लोग जब जाएंगे अपने साइट सीइंग पर जिसका दिल हो तो उसको देखिएगा। तो वहां पर सब लोग इकट्ठे रहने शुरू हुए और अब परीक्षा का दौर शुरू हुआ। भगवान भी तो परीक्षा तो लेगा ना, बच्चों में कितना संशय कितना निश्चय है। अब क्या हुआ, धीरे 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 शरीर बीमार पड़ने लगे, पीछे शमशान था और उसके साथ साथ वहां पे नाग आदि घूमते थे, भय, कई लोग डर के भागे। फिर धीरे धीरे जो मैंने बताया धन भी खत्म होता गया। एक दिन ऐसा आया जो कैश बॉक्स में केवल जाके 4 आना बचा, और 4 आना बचा वो भी प्रभु के अनुकंपा है। परीक्षा तो परीक्षा होती है, लेकिन बाबा ने बाबा से पूछा, स्टोरी सुना देती हूँ, बाबा से पूछा, बाबा ऐसी ऐसी बात है केवल कैश बॉक्स में 4 आने हैं, भोजन की बेल कब लगेगी। भोजन की बेल हमारे यहाँ 12 बजे लगती है दिन में। बाबा ने कहा जितने बजे लगती है उतने बजे ही लगेगी। और ये था ईश्वरीय कार्य, ये ईश्वरीय कार्य है, कई बातों से सिद्ध होता है, वो आज उस विषय को मैं नहीं ले रही हूं, कई बातों से सिद्ध होता है। तो बाबा कैश बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है, 4 आना ही है। बाबा ने कहा वेट एंड सी। तो आपको याद होगा पुराने जमाने में कुछ लोग क्या करते थे, लिफाफे में ही पैसे डाल के भेज देते थे। ऐसे बाबा ने कहा डाक आने दो, डाक के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। और डाक आई, उसमें पैसे थे, उसका अनाज खरीदा गया, उससे खाना बना और बेल ठीक 12 बजे लगा। कैसे, ऐसा दौर भी आया जो कि ज्वार की रोटी पूछी जाती थी, तुम कितनी रोटी खाओगे। आज हमसे कोई पूछे आप कितनी रोटी खाओगे, हम कह देंगे हमें तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन आश्रम निवासियों से पूछा जाता था तुम कितनी रोटी खाओगे, तो उतनी ही बनेगी, एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। ये सब फेजेस पार हुए। फिर बीच में ये दौर आया जो ज्वार की आधी रोटी और 1 कप लस्सी यही मिलती थी, उसमें ही सरवाइव करना है। अब कौन सरवाइव करेगा, इसका पक्का विश्वास होगा, निश्चय होगा, और जो सोचेगा अरे पता नहीं आज ये हुआ कल को क्या होगा, इससे तो अपने घर जाओ, और घर वाले तो बुला ही रहे हैं। और कहा जाता है जब बहू का मन उदास होता है तो माँ के घर से बुलावा आ जाता है, ऐसे ही अब जो कमजोर पड़ रहे थे उनके मित्र संबंधियों ने बुलाना शुरू किया, वे लोग गए और आज दिन तक लौटे नहीं। कुछ लोग लौटे और हमने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, इतना विस्तार को हो जाएगा, ऐसे ही इतने आश्रम बनेंगे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन वो समय जो उन्होंने गंवा दिया वो गंवा दिया, गया गया सो गया। 5:50 को हम लोग 5th of May, 5 मई, 5वां महीना और 5:50 को हम लोग आबू आए थे। 52 में बाबा ने पहले दो बहनों को भेजा कि अब आप लोग तैयार हुए हैं, अब ये ज्ञान आप औरों को भी दो। पहले दो बहनें जो थी वो थी दादी मनोहर इंद्रा और दादी आतम इंद्रा। आतम इंद्रा जी बाद में यूपी की सारी स्थापना के निमित्त बनी और मनोहर इंद्रा दादी फिर बाद में पंजाब में गई, लेकिन सबसे पहले बाबा ने इनको भेजा दिल्ली में। दिल्ली के यमुना घाट पर ये दोनों दादियां जाकर के कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई स्थान नहीं, किसी व्यक्ति की पहचान नहीं, केवल एक परमात्मा के बल और भरोसे पर ये दोनों दादियां निकली। बाबा ने उनको केवल एक थैली में एक जोड़ी कपड़ा दिया, एक पहना है और एक उसमें, और कुछ पैसे पता नहीं कितने 50 या कितने दिए, बच्चे जाओ। उससे दिल्ली के वहां से जो दादियों ने प्रवचन किए उससे निकली, दिल्ली में नगर सेठ होते थे लाला जगन्नाथ, उनकी माँ, और उनकी माँ ने देखा ये दो सुकुमारियां और ऐसे यमुना के घाट पर, वो डेली यमुना स्नान के लिए जाया करती थी, यमुना के घाट पर, लगती तो ये बहुत अच्छे परिवार की है, यहां पर उन्होंने कहा ये कन्याएं यहां नहीं रहेंगी। और उनको उन्होंने गौरी शंकर जी का मंदिर जो लाल किला के सामने है उसकी धर्मशाला में लाया। वहां पर दादियों ने जब प्रवचन किए तो ढेर के ढेर लोग आने शुरू हो गए, तो जो मंदिर का पुजारी था वो हैरान हो गया, आज दिन तक मेरे पास इतना रश नहीं आता था, ये क्या हुआ। उसको भी खलबली मची, उसने कहा ये लोग यहां से जाने चाहिए, मेरे भगत जो है वो वहां जा रहे। फिर एक कमरा लिया गया और कमला नगर में, और बाद में 151E कमला नगर हमारा सबसे पहला सेवा केंद्र खुला। और वहां से सेवाएं अब आरंभ हुई और सारे विश्व में आज आप जानते 140 देशों में 4,500 से अधिक सेवा केंद्र हैं, कितनी गीता पाठशालाएं हैं, 10-12 लाख भाई बहने तो अपने भारत में ही हैं, विदेशों में कितने हैं, परंतु वहां से ये शुरू हुई। लेकिन लोगों के मन में कुछ एक भ्रांतियां आज दिन तक भी बनी हुई हैं। उनमें से एक भ्रांति है क्या, कि ये ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं। आप में से कितनों ने सुना हुआ, सच सच बता देना, ऊंचे हाथ खड़े करो ना, मैं देखू तो जादू करते हैं ना। हाँ, और भी हाँ बहुत होंगे। मैं कोई वैसे नहीं कह रही, लेकिन मैं 9 वर्ष की आयु से ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हुई हूँ और अपने अनुभव के आधार से, अपनी हमारी लौकिक माँ भी यही कहती थी, जब हमारे पिताजी ने जाना शुरू किया तो हमारी लौकिक माँ भी कहती थी इनको जादू लग गया है। तो जादू और कोई नहीं, ज्ञान का जादू है, क्योंकि जादू करके हम करेंगे भी क्या। आपको पता हो इतना सारा होता है, फिर भी हमारे पास कोई संख्या हजारों की तादाद में नहीं आती है, मुट्ठी भर आते है। कारण क्या? यहाँ पे ज्ञान जो सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना पड़ता है, और ज्ञान का जादू जरूर है, ज्ञान का जादू जरूर है, ज्ञान से समझ मिलती है, और अगर समझ से हम कोई बात एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको हम अपने व्यवहार में तो उतार ही लेते हैं ना। लोग कहते हैं अरे मैं 40 साल से इसको कह रहा था कि भाई तुम स्मोकिंग छोड़ दो, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दो, छोड़ा नहीं, और ब्रह्मा कुमारियों ने कहा एक दिन में छोड़ दिया। यह मेरे हमारे अपने परिवार में हुआ है, एक दिन में। शाम को गए हैं पिताजी और सवेरे से सब चीज बंद, तो माँ को तो जादू लगना ही था, होना ही था ना शक कि ब्रह्मा कुमारियों ने जादू किया है। जादू की क्या बात, मैं आपको हंसी की बात सुनाती हूँ, सुनेंगे? बैठे हैं ना। एक सज्जन भाषण कर रहे थे, ये सच्ची बात है, भाषण कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगी, और हमारा जो कमला नगर का केंद्र है ना उसकी खिड़की के थ्रू, वहां पे एक तिकोनिया पार्क था, वहां उनका भाषण हो रहा था, और बहनें जो थी ना वो अपने कमरे में बैठ करके सुन रही थी। तो भाषण करते हैं, ये उनका भाषण है, देखो ब्रह्मा कुमारियों के पास कोई नहीं जाना, क्यों? वो जादू करती है, और गुरुवार के दिन ये भोग लगाती है, गुरुवार था बृहस्पतिवार, भोग लगाती है, भोग में ये बनाती है हलवा, और उस हलवे में ही जादू होता है। एक माता थी, ये उनका भाषण है, एक माता थी, उसने सुना हुआ था, वो इनके कमला नगर सेंटर पर गई, और कमला नगर सेंटर पर गुरुवार के दिन भोग लगा,
शाम।
सुना रही थी कि वे सज्जन बोले कि एक माता थी, उसने सुना हुआ था ऐसे ये जादू करती हैं, तो वो गई इनके कमलानगर सेंटर पर और वहां गुरुवार का दिन था, भोग लगा और भोग में बना था हलवा। चूंकि उसने सुना हुआ था, ये मैं आपको बता दूं आज भी कमलानगर में गुरुवार के दिन हलवा ही बनता है, तो क्योंकि उसने सुना हुआ था तो उसने हलवा खाया नहीं, वो आकर के हलवा अपनी भैंस को खिला दिया जो खूंटी से बंधी हुई थी। उसको इतना जादू चढ़ा वो खूंटा तोड़ के इनके कमलानगर सेंटर पर पहुंच गए। और अगर आपने कमलानगर सेंटर देखा हो किसी ने, उसकी सीढ़ियां ऐसी ऐसी थी, वो राउंड राउंड नहीं होती थी पुराने जमाने में ऐसी, अब उस पर भैंस चढ़ गई ज्ञान सुनने के लिए। सोचो तो सही, अब वो सज्जन भाषण कर रहा है। खैर, इस तरीके की बातें हुई। बाकी जादू कोई और नहीं होता है, जादू ज्ञान का अवश्य। कोई कहते हैं अरे इनका जो सुरमा है ना वो माउंट आबू से बन के आता है, ये सुरमा लगाती है। आप में से किस किस को सुरमा लगाया गया दो दिन में बताइए? किसी को नहीं लगाया। कविता में ना आपने किसी को सुरमा नहीं लगाया। कोई सुरमे की बात नहीं है, कोई जादू की बात नहीं। जादू करना हो तो हम करेंगे भी क्या जादू करके, आप बताइए। आप अगर यहां रहना भी चाहें ना तो भी हम आपको नहीं रखेंगे, आप वापस अपने घर जाओ। क्यों, इतने लोगों को कहां रखा जाएगा? और ज्ञान जो आप धारण करते हैं वो संसार में उसको यूज करो ना अपनी लाइफ में, यहां बैठ के क्या करोगे? इसलिए ये हमारा सिस्टम ही नहीं है। बाकी जो ज्ञान अच्छा लगता है तो नेचुरल वो व्यक्ति तो आएगा ना। दूसरी बात, दूसरी भ्रांति, अभी ये क्लियर हुआ कोई जादू नहीं है? अभी भी किसी को डाउट हो तो बता देना। कहते इनकी आंखों की तरफ नहीं देखना, इनकी आंखों में ही जादू होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांतियां बनी हुई है। क्या है मैं आपको बता देती हूं। आप कहेंगे फिर भ्रांति क्यों आई, रीजन शुड बी देयर। रीजन ये है कि अपने यहां ओपन आई मेडिटेशन है जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। सब जगह पर मेडिटेशन में लोग आंखें बंद कर लेते हैं, हमारे यहां कहा जाता है आंखें खोल करके योग करो। क्यों, आप कर्म योगी हैं, आपको कर्म करने तो आंखें बंद करके तो कर्म नहीं करोगे। जब तक मेरी आंखें बंद हैं तब तक तो मैं योगी, और जब मेरी आंखें खुल जाएं तो मैं भोगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। योगी माना योगी, तो आंख खोल करके जब आप योग करते हैं फिर आप जीवन के किसी भी हिस्से में कोई भी कार्य कर रहे हैं आपकी वो योग युक्त अवस्था रह सकती है। इसलिए लोग कह देते हैं कि इनकी आंखों में जादू है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात वो आप सबके अंदर उठती है, क्या इनके पास पैसा कहां से आता है? राइट है ना क्वेश्चन? मैं देख रही हूं चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, उससे समझ रही हूं है पैसा कहां से आता है। मैं आपको एक बात आज बता देती हूं, हमारा नियम है, हमारे फाउंडर ने हमें सिखाया है, मांगने से मरना भला। बच्चे आपका हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका हाथ ऐसा होना चाहिए। आप देवी देवताओं के बच्चे हो, देवी देवता माना देने वाले, लेने वाले नहीं। अब आप कहेंगे बहन जी अगर आप लेते नहीं है तो इतना सब ये कैसे होता है, कैसे चलता है? उसका भी आंसर है, जो आने वाले बेनिफिशियरीज हैं, किसी के ऊपर कोई फिक्स नहीं है इतना अमाउंट आपको देना ही है, नहीं, वॉलंटरी है। वो रखा है बॉक्स, यहां रखा है बॉक्स रखा है, जिसको जो डालना है डालो, हम हाथ में क्यों लें, हम अपना मन मैला क्यों करें। ये 500 देता है, ये 50 देता है, तो मेरा मन 500 वाले की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, नहीं जाएगा? मैं अपना मन मैला क्यों करूं, मुझे तो कोई दे नहीं रहा। अगर मुझे कोई देगा तो दान, दान का हजम करना बड़ा मुश्किल है। कोई मुझे देगा तो मैं उसका रिटर्न कैसे करूंगी, मेरे में तो ताकत नहीं है रिटर्न करने की। वो बॉक्स है जिसमें जिसको जो डालना है, जितना डालना डालो, आपका संबंध भगवान के साथ है, भगवान आपको रिटर्न करेगा, मैं रिटर्न नहीं कर सकती। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी का रिटर्न इस तरीके से नहीं कर सकता। बेनिफिशियरीज समझते हैं कि भाई हमें फायदा होता है, उनकी जीवन सिंपल होती है, फैशन परस्ती से छूटते हैं, जीवन में जो ऐब होते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग इत्यादि, वो सब खत्म होते हैं। चौथा, डिमांड्स घट जाती हैं, लाइफ अच्छी बन जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी होती है, तो क्वालिटी ऑफ लिविंग भी अच्छी होती है। तो नेचुरली जहां से फायदा होता है वहां व्यक्ति का धन जाता है ना, लगाते हैं। तीसरी बात, कभी भी अपने ये सिस्टम नहीं है कि आपको इतना करना होगा, नहीं। एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए शांतिवन का प्रोजेक्ट है, इतना सब बनाना कोई मासी का घर तो नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अपने पास आने वाले कोई बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट्स इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। भगवान गरीब निवास, अमीर निवास नहीं। गरीबों की बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक एक रुपए से तालाब भरता है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे, हमारी चीफ आदरणीय दादी प्रकाशमणि उस समय थी, उन्होंने कहा, ये हमारा परिवार है, उन्होंने कहा सारे विश्व में ये गया कि ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, हर एक स्टूडेंट जो क्लास में आता है एक रुपया प्रतिदिन बॉक्स में डाले, एक रुपया, वन रुपी इकोनॉमी, एक रुपया क्या चीज होती है, एक एक रुपया। मान लीजिए हमारे 9 लाख परिवार है, 9 लाख में से 4 लाख नहीं डालते हैं, 5 ही डालते हैं, मान लीजिए, हो सकता है ना, एक दिन में कितना इकट्ठा हो गया, 5 लाख। धीरे धीरे करते करते जब तक प्रोजेक्ट चलता रहा तब तक इकट्ठा होता रहा। फिर जहां दुनिया का 10 खर्च होता है, बाबा के घर में 3 खर्च होता है। कैसे? आर्किटेक्ट है, आने वाले भाई बहन जो आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट की फीस कितनी होती है? जो आने वाले वो कहते हैं, अरे हम दुनिया से कमाते हैं, ये अपना घर है, घर से थोड़ी कमाया जाता है। आर्किटेक्ट फीस नहीं लेता। किसी का बिजनेस है लोहे का, वो कहता है स्टील मैं इतनी सप्लाई करूंगा। किसी का सीमेंट का है, किसका ईंटों का है, किसका किसका है। ऐसे धीरे, जैसे एक परिवार होता है, परिवार में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज इकट्ठी करके बनती है, इस रीत से बनता है। ऐसे हमारे सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो इस आधार से बने, सब तरफ। मीडिया दादी जी से आके पूछता था, आपके पास इतना पैसा आता कहां से है? दादी उनसे कहती थी, आपका पैसा जाता कहां है? जहां आपका जाता है वहां हमारा नहीं जाता। दुनिया का पैसा जाता कहां है, सोचो। वहां हमारा नहीं जाता, वो बचता है, वो हम यूज करते हैं। फिर हमारे जितने भी सेवा केंद्र है वो सब निमंत्रण पर खुलते हैं। ये भी एक बात मैं आपको बता देती हूं, हम नहीं खोलते, हम लोग प्रदर्शनी करते हैं, वहां लोकल लोगों को अच्छा लगता है तो चाहते हैं हमारे गांव में कंटिन्यू करें, तो गांव में फिर वो लोग ही स्थान ढूंढते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, और उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि और आगे बढ़ाया जाए फिर वो माउंट आबू में लिखते हैं कि हम लोग इतने 50, 60, 100 भाई बहने हैं, हम चाहते रेगुलर हमारा क्लास हो, दादी जी माउंट आबू से आप बहने भेजो, तो दादी जी माउंट आबू से नियुक्त करती हैं। बेशक होती लोकल है लेकिन वो पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, 50, 60, 100 स्टूडेंट जितने होते हैं वो जिम्मेवारी लेते हैं कि हम सेवा केंद्र को संभालेंगे चलाएंगे, इस रीत से चलता है। अब यहां पर जब लोग आते हैं, आप में से किसी को कहा गया कि आपको इतना पैसा देना है? लेकिन यहां पर जब लोग आते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम धार्मिक स्थान पर आए, धार्मिक स्थान पर आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य बनता है जो एक भंडारी होती है जो कि भाई बहनों के लिए जो जनरल है, जाके उसमें जो भी डालना डालो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थान से कोई भी लेना पसंद नहीं करता, ये तो आप सब जानते हैं। हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी है, आप में से कुछ लोगों ने पूछा भी है कि हम लोग आते हैं, रह रहे हैं, खर्चा तो होता है, तो हम करना चाहते हैं, हम क्या करें, तो उनको फिर वैसे गाइड करते हैं। ठीक है, ये दूसरी भ्रांति क्लियर हुई, पैसा कहां से आता है। ओके, राखी पर ज्ञानी जैल सिंह जी देश के राष्ट्रपति हुए ना, तो कई लोग देना पर हम कहते हैं ना हमें 5 खोटे पैसे चाहिए, ज्ञानी जैल सिंह जी से अच्छा संबंध था, वो माउंट आबू भी 2-3 बार आए और वैसे भी आते थे। जब राखी उनको बांधी तो आमतौर पे जैसे सब लोग तैयार रखते हैं एनवेलोप, उन्होंने तैयार रखा हुआ था, देने लगे। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे ना खोटे पैसे चाहिए। कहते हैं मैं बहुत छोटी थी और तो बहुत बड़े थे, तो मैंने कहा मुझे खोटे पैसे। कहते तुम्हें खोटे पैसे का शौक है? मैंने कहा हाँ, मेरी हॉबी है, मैं खोटे पैसे जमा करती हूँ। तो देखने लगे, ड्रॉर खोला, ये खोला, वो खोला, कहा मेरे पास है तो नहीं। मैंने कहा नहीं है आपके पास। कहते तुमको पता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता आपके पास है। तो परेशान, कहते अच्छा मैं तुमको भिजवा दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो आज ही लेके जाऊंगी। तो फिर बताया उनको 5 खोटे पैसे कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये खोटे पैसे आप दे दो। तो कहते सारे दे दो एक। मैंने कहा आपकी हिम्मत है सारे देने, इकट्ठे दे दो, नहीं तो एक एक करके दे देना। तो उन्होंने आंखें बंद की, खड़े हुए आंखें बंद की और बोले दिया। ऐसे ये खोटे पैसे जरूर है। और हम लोग कहते हैं कि यहाँ की फीस क्या है, 1 आना और 5 खोटे पैसे, 1 बार दिन में सेवा केंद्र पर जाना पढ़ाई के लिए और 5 खोटे पैसे। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट भ्रांति आप लोगों के पास है, बता दूं, मैं ही बता दूं तो ठीक है। इनके पास इतनी छोटी छोटी यंग बहनें आती कहां से है ना? आप सब देख रहे हो छोटी छोटी बहनें हैं, यूथ है, इनके पास ये सारे यूथ आते कहां से हैं? कई बार पूछते हैं आप इनको कहां से ले आते हो। अरे भाई हम कहीं से नहीं ले आते, आपको पता हो, आप सबको पता हो हमारे नियम बहुत सख्त है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में राह चलती कोई भी महिला, कोई भी भाई, कोई भी कन्या नहीं रह सकती, हमारा नियम है। कई बार कुछ महिलाएं जो घरों से निकल आती हैं, तो लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारी महिला संस्था, इन्हीं से पूछो वो कहाँ है, हमारे आपके पास तो नहीं आए। हमारे पास आए, हमारा नियम है। मैं आपको क्या बताऊं, जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूं दिल्ली में, महिलाएं आज के क्या दशा है वो आप सब जानते हैं। ब्यूटिफुल से ब्यूटिफुल, ज्वेलरी से जड़ी हुई, अच्छी फैमिलीज की जार जार रोती हैं, हमें रख लो, हम नहीं जाना चाहते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम नहीं रख सकते, हमारा लॉ है। हम उनको गाइड कर देंगे, कोई विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा कार्य करती है उनकी तरफ हम इशारा कर देंगे, लेकिन हम लोग नहीं रख सकते। उसका कारण है, और कारण यह है, हम किसी भी कन्या को जिसका स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड नहीं है उसको हम यहां नहीं रख सकते। कन्याएं हैं अपने माता पिता के साथ आती हैं, और अगर वो माता पिता चाहते हैं कि कन्या इस ओर लगे, कन्या का अपना दिल भी होता है कि हम इस ओर लगें, तब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उनका स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है या नहीं। अगर होता है तब हम उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इनको इस रास्ते पर चलाओ। अगर हम देखते हैं वो कन्या चंचल है, कन्या में वो चीज नहीं है, तो हम पेरेंट्स को एडवाइस कर देते हैं, प्लीज आप इसको इस रास्ते पर नहीं लगाइए, पढ़ा लिखा के जैसे आपने इसके साथ प्रोफेशनली करना है, जो करना है आप इसको करें। फिर कन्या जब आती है, हम 18 वर्ष से कम की कन्या तो लेते ही नहीं है। हम लोग एनकरेज करते हैं कि कन्याएं जो है, अच्छा एजुकेशन का जमाना है, अच्छी तरह पढ़ें लिखें। कविता बिना आप खड़े हो ना, तो लॉ ग्रेजुएट ख्याति विधात्री खड़े हो ना, तो एक टीचिंग लाइन से है जो कि बिल्कुल छोटी, तीनों को मैं जानती हूं इसलिए मैंने इनको खड़ा किया। वो विधात्री वो आईबीएम में थी, गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है सर। ऐसे नहीं कि यहां पर एकदम यूजलेस, नो, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट मेंट फॉर डलर्ड्स। डल दिमाग वालों के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मेरे अपने प्रोफेसर ने मुझे कहा था, आशा तुम किस जगह जा रही हो, स्पिरिचुअलिटी इज मेंट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ये प्रोफेसर ने मुझे कहा था, लेकिन मैं जानती थी क्योंकि बचपन से ही सोच थी कि स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है लाइफ में। वही बात इन बच्चियों के साथ, इनके पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स के माध्यम से है, और पेरेंट्स ने देखा ये कुमारियां इस ओर लगती, तो हमने इनको पहले सब कन्याओं की ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो जॉब में जाना चाहती है, जाए एक्सपोजर मिलता है उनको, दुनिया से इंटरेक्ट करने का अनुभव मिलता है, बेशक करें। उसके बाद भी अगर उनका दिल होता है तब हमारे यहां ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद फिर इनके 3 महीने की और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है, फिर 1 साल की और होती है, ऐसे इनके 5 साल रिगरस ट्रेनिंग होती है। और इसमें उनको 3 सर्टिफिकेट्स लेने हैं, 4, अपना कि मैं संतुष्ट हूं, पेरेंट्स संतुष्ट होने चाहिए, टीचर जिनके अंडर ये काम करती हैं वे संतुष्ट होनी चाहिए, और 4, जिन स्टूडेंट्स की सेवा पे रहती हैं वो स्टूडेंट्स भी संतुष्ट होने चाहिए। जब ये 4 सर्टिफिकेट्स इनके होते हैं तब इन कन्याओं का फाइनल माउंट आबू में होता है, और तब हम इनको टीचर्स का बैज देते हैं, उससे पहले नहीं। और ये एज काफी है डिसीजन लेने के लिए, काफी। और फिर इसके बावजूद भी किसी भी कन्या के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं है कि तुम वापस नहीं जा सकती हो। आज मैं ठीक चल रही हूँ, कल को मेरा दिल करता है कि नहीं, नाउ इट इज टू मच, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? अनमने मन से या जिसका मन नहीं है उसको अगर हम रखेंगे वो कल को हमारे लिए प्रॉब्लम है ना, हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसलिए हम कभी ऐसी प्रेशर से और इस तरीके से कन्याएं नहीं रखते। ठीक है, आपकी तीसरी भ्रांति क्लियर हुई? और कोई रह गई हो तो बता दो। ऐसा है, मैं समझ गया, शादी करने को किसी को भी मना नहीं है, ना यहाँ पर शिक्षा हम देते हैं। जिसको शादी करनी है बेशक करे, खुशी से करे, खुशी से करे, कोई मना नहीं है, किसी को भी मना नहीं की जाती है। तो वो तो उन बच्चों से पूछा है ना, उनको जरूर कोई हायर एम प्राप्त हुआ होगा। आज कोई ये नहीं पूछता इतने सन्यासी क्यों बन रहे, ये कोई नहीं पूछता। और ब्रह्मा कुमार और कुमारी अगर कोई बन जाता तो पूछते। आज कोई राष्ट्रहित में भगत सिंह ने अपने आप को देश पर कुर्बान कर दिया, उसको किसी ने नहीं पूछा। अटल बिहारी जी को किसी ने नहीं पूछा, औरों को किसी ने नहीं पूछा, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने पर ही क्यों पूछते हैं? देखिए, जब किसी को हर बात की समझ उपलब्ध हो जाती है, जीवन का हायर एम और ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाता है, तो अपने आप को उस त्याग से ऊपर कर लेता है। ऐसे कितने भाई बहन होते हैं, बहन ने खुद शादी नहीं की, अपने भाई बहनों को सेटल किया, करते हैं ना, दैट वाज हर हायर एम। ऐसे हैं, बाकी यहां पर हम मना नहीं करते हैं। जिसको शादी करनी है बेशक कर सकते हैं, कोई मना नहीं। हमारे कहीं पर भी आप रेगुलर स्टूडेंट होके जाएंगे ना, कहीं पर भी हमारे यहां ये नहीं कहा जाता। बाकी हायर एम परस्यू करना, ये स्वतंत्रता तो हर एक को है ही, ये जरूर। बस और कोई? ठीक है, अभी जो आपसे प्रश्न पूछेगा उसको आप उत्तर देने में सक्षम है? हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी हम याद में बैठेंगे, शिव बाबा को याद करके फिर उठेंगे। इसका पूरा नाम है, वो भी नाम भी आप सुन लीजिए, पूरा नाम है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे मिलते जुलते कई नाम लोग आर्टिफिशियल री से लग करके अपने आप को चला रहे हैं, यू फॉरगेट देम। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहनों के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम बहनों के द्वारा, लेकिन दोनों को ही, फैमिलीज को केटर करती है, फैमिलीज, पूरी फैमिलीज को केटर करती है, लेकिन एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन बहनों के द्वारा होने कारण ब्रह्मा कुमार आते दोनों ही है। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में पूरी संस्था के इतिहास को, स्वरूप को हमारे सामने रखा, इसकी मुख्य शिक्षाएं और इससे जुड़ी हुई सारी भ्रांतियां भी बहुत सुंदर और सरल शब्दों में स्पष्ट की। आशा है आप सभी संतुष्ट होंगे और स्पष्ट हुआ होगा कि ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस गौरवशाली इतिहास के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या है। धन्यवाद दीदी जी।